ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में कुछ पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में कहा कि राज्य में कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, वनरक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी एसटीओ की पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप डी की भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए छूट 5 साल होगी। उन्होंने अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में 5% और ग्रुप बी के पदों में 1% आरक्षण देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में तैनाती के इच्छुक अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि देश में विश्व स्तरीय दवा नियामक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए जो भारत को विश्व की फार्मेसी कहे जाने के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग के बीच लगातार विचार विमर्श होते रहना चाहिए। श्री नड्डा ने आज दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के विनियमन पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर दवाओं के उत्पादक और निर्यातक के तौर पर भारत अग्रणी है। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के युवा भविष्य के नेतृत्व निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। इस दौरान डॉ मांडविया ने कहा कि युवाओं के बदलाव लाने की क्षमता से देश प्रगति और नवाचार की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था के वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में मेक इन इंडिया की झलक दिखलाते हुए बताया कि भारतीय साइकिलों की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स में इसका निर्यात बढ़ा है। पोस्ट के अनुसार बिहार में बने जूतों का इस्तेमाल अब रूसी सेना कर रही है। क्रिकेट विश्व कप का समय नजदीक आते ही कश्मीर में बने बल्ले की मांग बढ़ गई। वहीं अमरीकी बाजार में अमूल अपने उत्पाद उतारकर भारत के अनूठे स्वादों को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। ओमान के तट पर एक तेल वाहक जहाज के डूबने से 13 भारतीय और श्रीलंका के 3 नागरिक सहित चालक दल के सभी 16 सदस्य लापता हैं। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र के अनुसार प्रेस्टिज फाल्कन नाम का यह जहाज ओमान के औद्योगिक बंदरगाह दुकम के पास डूबा। यह जहाज यमन के अदन बंदरगाह की ओर जा रहा था। ओमान के अधिकारी समुद्री अधिकारियों के साथ खोज और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगम्बर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। उन्होंने कर्बला में सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं। देश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आषाढ़ एकादशी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि भगवान विट्ठल की कृपा से समाज में खुशी और समृद्धि बनी रहे। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है, जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था उनमें से केवल गोला फेंक की एथलीट आभा खटुआ का नाम सूची में नहीं है। सूची में सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं। मौसम विभाग ने कर्नाटक के दक्षिणी भाग, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इन क्षेत्रों में अगले 3 दिन में बहुत तेज बारिश की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।